سورت البقرہ آیت نمبر 40 سے ایک نئی تقریر شروع ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل سے خطاب کیا ہے اور بنی اسرائیل جو ہیں ان کا جو ذکر ہے آیت نمبر 40 سے لے کر 142 تک 10 رکوع میں جو ہے وہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ تقریر کی ہے. بنی اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی, حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 40,000 نبی ان میں آ چکے تھے. اور یہاں پر اللہ رب العزت اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میں نے تجھے کن کن انعامات سے نوازا اور انعامات پا کر تیرا رویہ کیا رہا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایا فرہبون. اے بنی اسرائیل, یہاں پہ بنی اسرائیل کا لفظ اہم ہے. یا جو ہے یہ حرف ندا ہے, جیسے اردو میں آپ کسی کو جب آواز دیتے ہیں تو کہتے ہیں اے, اور عربی زبان میں یا لفظ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. بنی اصل میں بنین تھا, بنین جو ہے یہ بیٹوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں سے یا جو ہے وہ با نون یا, یہ اس کا روٹ ہے. اور ابن بیٹے کو کہتے ہیں ایک کو, اور بنون بنین یہ جمع کے لیے آتا ہے. اور آپ دیکھیں تو آپ کو بنی نظر آ رہا ہے, یا کے بعد نون گر چکا ہے. تو ایسے ہی جیسے بعض واول لیٹر ہوتے ہیں نا انگلش میں بھی, کہ وہ ہوتے ہیں تو ساؤنڈ نہیں دیتے اور بعض اوقات وہ لکھے بھی نہیں جاتے, تو اسی طرح یہاں پر بھی نون جو ہے وہ گر چکا ہے. اور اسرائیل, اسرائیل دراصل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. اسرائیل, اسرا جو ہے وہ عبرانی زبان میں بندے کو کہتے ہیں, ایل کے معنی ہے اللہ کے, جس طرح عربی زبان میں کہتے ہیں نا عبداللہ اللہ کا بندہ, اسی طرح عبرانی زبان میں اسرائیل اللہ کا بندہ. اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا, اللہ رب العزت نے ان کے اسی لقب سے خطاب کیا ہے. اور یہاں پہ ان کی نسل جو ہے ان کو مخاطب کیا گیا ہے, فرمایا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل اذکرو یاد کرو. ذال کافرا ذکر اور اذکرو یہ آرڈر کا صیغہ ہے, اس کے معنی ہے یاد کرو. کیا یاد کرو؟ نعمتی, میری نعمت کو. نعمتی کا لفظ جو ہے یہ اسم جنس ہے, نون عین میم, یہ واحد جمع مذکر مونس استعمال کیا جاتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں احسان, نوازش, مہربانی, فضل. اور ایسی نوازش, مہربانی اور فضل کو کہتے ہیں جو دوسرے پر کی جائے. اور یہاں پہ نعمت کا لفظ واحد استعمال ہوا ہے اور اس کی جمع بھی ہے, جیسے نعم یا انم, لیکن واحد استعمال کر کے بھی جمع کے معنی یہاں پہ مراد ہیں, کیونکہ نعمت سے مراد ہر طرح کی نعمت ہے, چھوٹی ہو, بڑی ہو, تھوڑی ہو, زیادہ ہو. اور یہاں پہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ اپنی نعمتوں کی جو ہے وہ نعمتوں کی فہرست بنوا رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کی تھی. اب آپ دیکھیے کہ جب نعمتوں کا ذکر ہے تو اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر کیا نعمتیں کی تھی. گزشتہ انعامات الہی, جیسے بنی اسرائیل میں بکثرت انبیاء اور رسول آئے, ان کی گزشتہ تاریخ جو تھی اس میں جو ہے وہ علم, مذہب, کتابیں ان پر نازل ہوئیں. اللہ رب العزت نے ان پر جو ہے وہ امن و سلویٰ کی بارش کی, ان پر جو ہے وہ دھوپ میں بادل ہوتے تھے جو سایہ کرتے تھے, ان کے لیے 12 چشمے پھوٹ پڑے. और अनगिनत नेमते, तो कहा नेमती अल्लती, मेरी उस नेमत को याद करो। और नेमत का लफ्ज यहाँ पे मुअन्नस है, इसलिए अल्लती की जमीर आई है। अगर नेमत का लफ्ज जमा तो है ही, लेकिन अगर मुजक्कर होता तो अल्लाह दी आता, तो अल्लाती मुअन्नस है कि मेरी उस नेमत को याद करो। कौन सी नेमत? अनअमतु अलैकुम, जो मैंने तुम पर की थी। मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पे अनअमतु अलैकुम के मानी है अनअमतु अला आबाएकुम, कि वो नेमत जो मैंने तुम्हारे बाप दादा पे की थी, तुम्हारे अबाऊ अजदाद पर की थी। और नेमतों की याद दहानी क्यों करवाई जाती है? ताकि एहसानात, नवाजिशें, नेमतों को याद करके फिर रवैये पे गौर किया जाए, अपने किरदार पर जो है वो गौर किया जाए। अब यहां पे भी फरमाया जा रहा है कि जो मैंने नेमत तुम पर की थी उसको याद करो, वह औफू बि आहदी, और वफा करो और पूरा करो, बि आहदी अहद को मेरे साथ, तो मेरे साथ जो तुम्हारा अहद था उसको तुम पूरा करो। औफू जो है ये भी ऑर्डर का सीगा है, हुक्म दिया गया है, इसके मानी इसका मादा है वफा या वफा करना, पूरा पूरा करना। बि आहदी मेरे अहद को, तो मेरे अहद को पूरा करो। यहाँ पे अहद से क्या मुराद है? सूरत अल-माईदा, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने अहद की जो है वो तफसील बताई है कि बनी इसराइल से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या अहद लिया था। सूरत अल-माईदा आयत नंबर 12, और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से अहदो पैमान लिया, और उन्हीं में से 12 सरदार हमने मुकर्रर किए, और अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर तुमने नमाज कायम की और जकात अदा की और मेरे रसूलों पर ईमान लाए और इनकी मदद करते रहे और अल्लाह ताला को उम्दा कर्ज देते रहे, तो तुम्हारे गुनाहों को मिटा दूंगा और तुम्हें उस जन्नत में दाखिल करूंगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं। तो आप देख लीजिए कि ये था वो अहद जो बनी इसराइल को वफा करना था। तो वह औफू बियाहदी, और पूरा करो मेरे साथ अहद को, ऊफी बियाहदिकुम, मैं पूरा करूंगा अहद को तुम्हारे साथ। तो अल्लाह ताला फिर कैसे पूरा करेंगे, अल्लाह क्या वफा करेंगे? तो अल्लाह का अहद को पूरा करने से मुराद ये है कि अल्लाह उनके गुनाह मिटा देंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको जन्नत में दाखिल करेंगे। फिर साथ ही फरमाया वा इय्या या फरहबून, और मुझ ही से तुम डरो। फरहबून जो है इसका रूट है, ये लफ्ज जो है आप पहले भी वैसे पढ़ चुकी हैं, रा हा बा, और इसके मानी होते हैं ऐसा खौफ जिसमें बेचैनी भी हो और एहतियात भी शामिल हो। राहिब और रहबानियत, इसकी फैमिली के ये लफ्ज आप सुन चुकी हैं। राहिब कौन होते हैं? अल्लाह से डरने वाले, फिर इबादत गुजार, फिर गोशा नशीनी इख्तियार करने वाले। तो रहबानियत कहते हैं कि किसी की अजमत के तसव्वुर से दिल पर जो लर्जिश और कपकपी तारी हो, तो वो रहबत है। तो यहाँ पे वह या फरहबून, और मुझ ही से फस तुम डरो। अब यहाँ पे बनी इसराइल को अल्लाह रब्बुल इज्जत, उन्होंने जो वादे किए थे कि रसूल की अताअत करेंगे और नमाज कायम करेंगे, जकात अदा करेंगे, और अल्लाह को, अल्लाह के जो फराइज हैं उनको पूरा करते रहेंगे, तो उनको याद दिलाया जा रहा है और उनसे कहा जा रहा है कि तुम जब अपने ये वादे पूरे करोगे तो मैं भी अपने अहद को पूरा करूंगा। और अल्लाह का अहद, अल्लाह से बढ़कर जो है वो अपने अहद को पूरा करने वाला कौन हो सकता है? और जब लोग अतात इख्तियार करते हैं, बंदगी करते हैं, तो अल्लाह गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन शर्त क्या है कि जब अहद पूरे किए जाए, जब बंदगी की जाए, तो अल्लाह से डरते हुए रहबत के साथ। और रहबत का वो तसव्वुर नहीं जो कि ईसाइयत में है कि दुनिया छोड़कर जो है वो जंगलों में जा बसें और वहां बसेरे डाल लें, या बाज़ लोग कहते हैं कि निकाह ही नहीं करना। तो रहबत का वो तसव्वुर जो कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलता है, कि आपने ये भी कहा कि मैं गोश्त भी खाता हूँ, मैं औरतों से ताल्लुक भी रखता हूँ, मैं रातों को जागता भी हूँ, मैं दिन को रोजा भी रखता हूँ और छोड़ता भी हूँ, और मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। फिर फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, वा आमिनू, और ईमान लाओ, बिमा अनजलतु, जो मैंने नाजिल किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या नाजिल किया? आप देखिए कि यहाँ पे जो है इससे मुराद कुरान मजीद है कि कुरान मजीद जो मैंने नाजिल किया है, ऐ बनी इसराइल तुम इस पर ईमान ले आओ। मुसद्दिक माकुम वो तस्दीक करता है उसकी जो तुम्हारे पास है। तो उनके पास क्या था? तौरात। तो जो किताब तुम्हारे पास है, माकुम तुम्हारे पास है, उसकी वो तस्दीक करता है। वला तकूनु अव्वल काफिरिन बे, और तुम ना हो जाओ सबसे पहले इनकार करने वाले इसके, लिहाजा सबसे पहले तुम ही इसके मुनकिर ना बन जाओ। तो यहाँ पे जो बेही आया है तो ही की जमीर से मुराद क्या है कि तुम किसके इनकार करने वाले सबसे पहले मत बनो। एक राय यह है कि इससे मुराद कुरान मजीद है, दूसरी राय यह है कि इससे मुराद इसकी जमीर जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है। और मुफस्सरीन कहते हैं कि असल बात यह है कि दोनों ही बातें हैं, क्योंकि कुरान जो है वो बगैर रसूल के नहीं है, क्योंकि कुरान पर अमल नहीं हो सकता, और रसूल जो है वो बगैर किताब के नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो है वो ये कहा कि ना तुम कुरान का इनकार करो और ना रसूल का, और क्योंकि कुरान और रसूल दोनों आपस में लाजिम और मलजूम है। जिसने कुरान का कुफर किया उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर किया, और जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर किया उसने कुरान के साथ कुफर किया। और ये जो कहा कि अव्वला काफिरिन, कि तुम पहले इनकार करने वाले ना बनो, इसके मानी ये हैं कि मदीना में यहूदियों को इस्लाम लाने की दावत दी गई, और उससे पहले ये दावत जो थी वो मक्का के मुशरिकीन को दी गई थी, और मक्का के मुशरिकीन ने जो है वो इनकार किया था। कुछ उसमें से ईमान लाए लेकिन कुछ लोगों ने इनकार किया। तो कहा कि जहां तक इनकार की बात है, अहले मक्का तो पहले ही इनकार कर चुके, अब अहले किताब जो है वो मदीना में पहले इनकार करने वाले ना बने क्योंकि उनके पास किताब मौजूद है। फिर दूसरी बात उनसे कही, वला तश्तरू बिआयाती समनन कलीला, और ना खरीदो और ना बेचो, क्योंकि आपको पता ही है तश्तरू का लफ्ज जो है ये ज़वील अज़दाद में से है, ये खरीदने और बेचने दोनों के लिए आता है। फिर फरमाया कि तुम जो है मत बेचो मेरी आयात को समनन कलीला। सामीम नून, समन जो है ये असल में हर उस चीज को कहते हैं जो फरोख्त करने वाला अपनी चीज के बदले में खरीदार से वसूल करता है, कभी सामान होता है और कभी पैसे होते हैं। और कलील जो है इसका रूट है काफ लाम लाम, किल्लत, जैसे आप किल्लत के लफ्ज भी इस्तेमाल करती हैं, ये लफ्ज जो है ये थोड़े के मानी जो है वो देता है। तो थोड़ी कीमत पर मत खरीदो। अब इसका ये मतलब नहीं कि जब ज्यादा पैसे मिले तो फिर अल्लाह के अहकाम को बेच दिया जाए, इसके ये मानी नहीं है कि ज्यादा मुआवजा मिले तो अहकाम इलाही का सौदा कर लिया जाए, बल्कि मतलब ये है कि अल्लाह के अहकाम इतने कीमती हैं, इतने बेहतरीन हैं, इतने आला और अफजल हैं कि सारी दुनिया का मालो मता भी जो है वो अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में जो है वो कलील है। अगर किसी को सारी दुनिया भी मिल जाए तो सारी दुनिया जो है वो अल्लाह के अहकाम के मुकाबले में फानी है, कलील है, थोड़ी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह के अहकाम को तुम दुनिया और दुनिया के माल के बदले बेच डालो। वइय्या फत्तकून, और मुझी से जो है वो तुम डरो, मेरा ही तकवा जो है वो इख्तियार करो। और अहले किताब के जो बनी इसराइल में यहूदी थे उनके जो उलमा थे वो अल्लाह की आयात को बेचते थे और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जो थे वो फतवे देते थे। तो यहाँ पे मुसलमानों को जायजा लेना चाहिए और हम सबको भी अपना अपना आपको भी जायजा लेना चाहिए कि आज कहीं ये किरदार आपके अंदर तो नहीं पाया जाता। फिर तीसरी बात, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली, और बातिल का रंग चढ़ाकर हक को मुश्तबे ना बनाओ। यहाँ पे तलबिसु का लफ्ज जो है ये अहम है और इसका रूट है लाम बा सीन लबेसा, और इसके लफ्जी मानी होते हैं पहनना। अब आप देखें कि जिस्म पर जब लिबास पहना जाता है तो जिस्म जो है वो अंदर से छुप जाता है, तो कपड़ा पहनना, बदन को छुपाना, उसके लिए अरबी जबान में लबिसा आता है, लबासा, लबासा यलबिसु। तो किसी चीज को दूसरी में मिलाकर असल चीज को मुश्तबे और मशकूक बना देना, क्योंकि अंदर जो जिस्म होता है फिर वो नजर नहीं आता ना, नशे वो फराज उसके छुप जाते हैं। तो अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और जो है वो हुक्म दिया कि वला तलबिसुल हक, और हक को गड़बड़ नहीं करो, छुपाओ नहीं, बिल बातिली बातिल से, वतक्तुमुल हक, और तुम जो है छुपाते हो हक को। और यहाँ पे लाम जो है वो छुपा हुआ है, जो पीछे आपने लाम पढ़ा ना वला, तो यहाँ पे भी आप पढ़ेंगी वो के बाद ला पड़ेगी, वला तक्तुमुल हक, और तुम जो है वो हक को मत छुपाओ। तो जानते बूझते हक को छुपाने की कोशिश ना करो, वह अंतुम तालमून, हालांकि तुम जानते हो। अब आप देखें कि मदीना के लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, और यहूदी जो थे वो पढ़े लिखे थे, वो अहले किताब थे, उनके दरमियान रसूल आ चुके थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए और उन्होंने जो है वो इस्लाम की दावत दी, तो मदीना के जो अनपढ़ लोग थे उन्होंने यहूदियों से पूछा कि आप लोग बताएं कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपने आप को नबी की हैसियत से पेश किया है, तो क्या ये सही है, ये जो नबुवत का दावा लेकर उठे हैं, आप लोगों की क्या राय है? तो जब यहूदियों से पूछा गया तो उन्होंने क्या किया कि लोगों को सही बात ना बताई, उन्होंने हक बात को छुपा लिया। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, आपके मिशन के खिलाफ लोगों के दिलों में वसवसे डाले, तो यहाँ पे कहा जा रहा है वह अंतुम तालमून, हालांकि तुम जो है वो जानते हो। इससे ये बात पता चलती है कि जब कोई हक बात पूछे और पता हो तो दूसरों को सही बात बतानी चाहिए, और अगर कोई सही बात नहीं बताता और उसको छुपाता है या पर्दा डालता है, तो वो जो है वो यही यहूदियों वाला तर्ज अमल जो है वो इख्तियार करता है। अब यहाँ पर जो है वो यहूदियों की और बनी इसराइल की ये जो उनका तरीका था, ये अंदाज था कि झूठा प्रोपेगंडा करना, हक पर बातिल के पर्दे डालना, या फिर एतराज करना, हक को बातिल से खलत मलत करना, इनकार करना, इसकी इसको गिनवाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है वो तवज्जो दिलाते हैं ईमान और अमले सवाले की तरफ, इबादात की तरफ, क्योंकि ये रवैया कैसे खत्म हो सकता है। वअकीमुस सलाता वआतुस ज़कात वरकऊ मर्राकीन, सबसे पहले ये हुक्म दिया और नमाज कायम करो। अब आप देखें कि आपने शुरू में भी पढ़ा था कि मोमिनीन की सिफात में ये है कि वो नमाज कायम करते हैं, और नमाज कायम करने का मतलब ये है कि नमाज जो है उसको इंफरादी जिंदगी में भी और इज्तमाही जिंदगी में भी कायम किया जाए, उसके फराइज, अरकान, शराइत, आदाब, और सारा जो उसका जो है वो नमाज के लवाजमात है उसका ख्याल रखते हुए। आपको जो है वो एक ईमेल जो है वो मिलेगी, उसमें जो है वो मुख्तलिफ पिक्चर्स हैं कि कैसे लोगों ने मुख्तलिफ जमानों में मुख्तलिफ हालात में नमाज कायम की है। इसमें औरतें भी हैं, इसमें लोगों ने हथियार पहने हुए वो भी हैं, हवाई जहाज पर भी हैं, समंदर में कश्ती में भी हैं, फिर जो है वो बच्चे भी हैं, बीमार जो है वो लोग भी नमाज कायम कर रहे हैं, फिर सफर में जो लोग हैं वो भी हैं। तो आप उस जब उसको आप देखें, ईमेल को आप देखें, उसकी सारी पिक्चर्स को, तो आप फिर अपने लिए अमल का उसूल लिखें कि मुझे अपनी जिंदगी में नमाज कायम करनी है, कहीं मैं नमाज कजा करने वालों में से तो नहीं हूं। क्योंकि सूरत मुदस्सिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि जहन्नुम में जाने की एक बड़ी वजह यह होगी कि लोग ये कहेंगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे। तो अपना जायजा लें, अपना मुहासबा करें कि क्या मेरी जिंदगी में इनफरादी तौर पर नमाज कायम है, क्या मेरे घर में नमाज कायम है, क्या मैं उसके लिए कोशिश करती हूँ। और दूसरा हुक्म, आतु ज़कात, और ज़कात अदा करो। वह आतु और हमजा ता या इसका रूट है, ज़कात के दो रूट हैं, ज़े काफ वो, और इसके मानी होते हैं खेती का बढ़ना, फलना फूलना। एक और रूट भी है इसका, ज़े काफ या, पाकीजा होना, पाक करना। तो माल जो है जब अल्लाह के रास्ते में दिया जाता है तो इससे जो है वो माल की मोहब्बत कम होती है, दुनिया की मोहब्बत दबती है और आखिरत की मोहब्बत उभरती है। तो कहा कि तुम जो है वो अल्लाह के रास्ते में जो है वो ज़कात अदा करो। तो बनी इसराइल के लोग जो थे नमाज भी छोड़ चुके थे और जकात भी नहीं देते थे, सूद खाते थे। अब यहाँ पे आप अपना अपना जायजा लें कि क्या हमारे यहाँ नमाज का निजाम कायम है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जकात देने की बजाय सूद के अंदर मैं मुलव्विस हूं किसी भी लिहाज से। वरकउ मार्राकीन, और जो लोग मेरे आगे झुक रहे हैं इनके साथ तुम भी झुक जाओ। मुफस्सरीन कहते हैं कि यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि रुकू करने वालों के साथ तुम झुक जाओ, तो दरअसल यहाँ पे नमाज बा जमात का हुक्म दिया जा रहा है। वरकऊ ये भी ऑर्डर का सीगा है, इसका मादा है रा काफ ऐन, बदन को झुकाना, सर को खम करना, अपनी पीठ जो है पुश जो है उसको झुकाना। और कभी तो ये लफ्ज इस तरह इस्तेमाल होता है और कभी महज आजजी और इनकसारी के मानी भी देता है। और यहाँ पे ये नहीं कहा कि वरकऊ के बस तुम रुकू करो, बल्कि कहा रुकू करने वालों के साथ कि दूसरे लोग जो नमाज बा जमात कायम कर रहे हैं तुम भी उनके साथ जो है वो झुक जाओ। और अगली आयत तो बहुत ही अहम है, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो। अता मरूना हमजा मीमरा अमर से है, ऑर्डर को कहते हैं कि क्या तुम दूसरे लोगों को तो कहते हो बिल बर्रे बिल बिर्री कि तुम नेकी करो, पतन सऊना अनफुसकुम और तुम अपने आप को भूल जाते हो। पतन सऊना का रूट है नून सीन या नसिया, इसके मानी है कि भूलना। तो खुद जो है अपने जब दूसरों को तुम कहते हो तो खुद अमल नहीं करते। वह अंतलूनल किताब, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। ये आयत बहुत ही अहम है और गौर व फिक्र की दावत देती है कि बनी इसराइल के लोगों के अंदर ये बीमारी पाई जाती थी कि दूसरों को कहते थे और खुद अमल नहीं करते थे। और आज उम्मत मुस्लिमा का क्या हाल है, आप अपना अपना जायजा लें कि क्या ये बीमारी, ये जो शदीद और खतरनाक बीमारी है, कहीं मेरे अंदर तो नहीं पाई जाती कि मैं दूसरों से कहती हूँ कि नमाज पढ़ो, मैं दूसरों से कहती हूँ कि एक अच्छा मुसलमान का किरदार होना चाहिए और अल्लाह की नाफरमानी से बचना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी में जो है वो अल्लाह का दीन जो है वो कायम नहीं है। इस सिलसिले में आप ये हदीस जो है वो जरूर याद रखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए कहते हैं कि मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा जिनके होंठ और जबाने आग की कैंचियों से काटी जा रही थी। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया ये आपकी उम्मत के दुनियादार वाइज है, दावा करने वाले नसीहत करने वाले, जो लोगों को तो नेकी का हुक्म करते थे मगर अपनी खबर ना लेते थे। इसे मुस्नद अहमद ने रवायत किया है। तो ये थी उनके अंदर बीमारी कि दूसरों को नेकी का हुक्म देते थे और अपने आप को भूल जाते थे। वन ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो। ततलूना इसका रूट है तालाम वो तालाम या, और इसके मानी होते हैं कि किसी चीज के पीछे पीछे आना और बार बार आते रहना। जैसे जो है वो सूरज चढ़ता है फिर उसके पीछे चांद आ जाता है, दिन होता है उसके पीछे रात आ जाती है। वश्यम सिवा दुहाहा वल कमरी इजा तलाहा, वहां पे तलाहा जो है मानी क्या है कि सूरज के पीछे चांद आया। और कुरान की आयात की तिलावत तो करते हैं लेकिन ये कि क्या फिर आयात के पीछे अमल भी करते हैं, इत्तबा भी करते हैं, ये है अहम बात। वह अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम जो है वो किताब की तिलावत करते हो। तो सब लोग गौर करें कि मैं कितना नाजरा पढ़ती हूँ, रमजान में कितने कुरान खत्म करती हूँ, तो क्या मैंने इस कुरान को अपनी जिंदगी में नाफिज किया है। याद रखिएगा अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका। इकबाल बड़ा उपदेशिक है मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का ये गाजी तो बना किरदार का गाजी बन ना सका। आखिरी बात क्या है, अफला ताकिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, सबर और नमाज से मदद लो। वस्तईनु ये लफ्ज आप पहले पढ़ चुकी हैं, जरा याद करें, आपने सूरत अल फातिहा में पढ़ा था नस्ताईन के अल्लाह हम तुझी से मदद चाहते हैं। नस्ताईन क्या रूट पड़ा था, आइन वो नून ऑन, और इसी की जो है वो फैमिली का लफ्ज है मुआविन एयानत। और यहाँ पे वस्ताईनु और तुम सब मदद मांगो بصبری صبر سے والصلاح اور نماز سے. اب نیکی کے راستے پر جب چلنا ہوگا, جب اطاعت کرنی ہوگی, تو جب چلنے میں مشکل محسوس ہو, دشواری لگے, تو پھر دشواری کا علاج کیا ہے؟ نمبر ایک صبر اور نمبر دو نماز. ان دونوں چیزوں سے جو ہے وہ طاقت ملے گی. صبر کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں جب استعمال کیا جاتا ہے تو عربی لوگ کیا کرتے تھے, کہتے تھے صبر تو دابا, میں نے جانور کو چارہ کھلائے بغیر باندھ رکھا. تو جب جانور چارہ نہیں کھاتا تو تنگی کی حالت میں ہوتا ہے نا, تو صبر کے معنی ہوتے ہیں کسی کو تنگی کی حالت میں روک لینا, باندھنا. تو عقل اور شریعت یا ان میں سے کسی ایک کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو روک کر رکھنا جو ہے یہ صبر ہے. اور پھر صبر جو ہے, ایک صبر تو یہ ہے کہ جب گناہ کرنے کو دل چاہے تو پھر اپنے آپ کو روکا جائے, اپنے نفس کی خواہش جو ہے اس کو پورا نہ کیا جائے, یہ بھی صبر ہے. اور ایک یہ کہ جب نیکی کرنا چاہے اور وہ مشکل لگے تو اس وقت بھی جو ہے وہ صبر کرنا اور نیکی کر گزرنا. تو یہ سب جو ہے وہ صبر کے اندر آتا ہے. تو کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ, کہ تم صبر سے مدد لو, وَالصَّلَاةِ, اور نماز قائم کرو. تو صبر کریں گے تو اپنی خواہشات جو ہے اس کے مقابلے میں آپ مسلسل نیکی پر بڑھتے چلے جائیں گے. اور یہ تو اندر سے صبر کی جو ہے وہ صفت پیدا کرنی ہے, اور باہر سے نماز کی پابندی کرنی ہے, وَالصَّلَاةِ, اور نماز. پھر فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور بے شک یہ مشکل ہے. وَإِنَّهَا, اور بے شک, ہاں کی ضمیر جو ہے ایک رائے یہ ہے کہ یہ نماز کے لیے آئی ہے کہ نماز مشکل ہے, دوسری رائے یہ ہے کہ یہ صبر کے لیے آئی ہے کہ یہ صبر کرنا مشکل ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکام اور ہدایات دی ہیں یہ سارا جو ہے ان پر عمل کرنا آسان نہیں ہے, یہ مشکل ہے. لَكَبِيرَةٌ جو ہے نا, کبارا کبر اور کبیر بڑے کے لیے آتا ہے, جیسے اللہ اکبر یا اکبر یا کبرا, تو یہ لفظ بڑائی کے لیے آتا ہے, اور اسی سے یہ کبیرتن مشکل کے معنی بھی دیتا ہے, جو چیز بہت بڑی ہوتی ہے, جیسے بڑی مشکل, کبھی مشکل کے معنی بھی دیتا ہے کہ یہ بہت سخت کام ہے, مشکل ہے. الا مگر نہیں, علی الخاشعین, جو کہ فرما بردار ہیں. خاشین عین, خشع اس کے لفظی معنی ہے جھک جانا, عاجزی اختیار کرنا. تو جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں, جو اللہ کی عظمت کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیتے ہیں, جو اطاعت کرتے ہیں اور جو متواضع بن کر رہتے ہیں, ان پر یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. اور یہ کون لوگ ہیں جو کہ خشوع اختیار کرنے والے ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم, یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں. ذوئے نون نون زن, زن جو ہے یہ جیسے آپ کہتی ہیں کہ ہمیں نیک زن رکھنا چاہیے, تو زن کا لفظ ذویل ازداد میں سے ہے, یہ اچھے معنی میں بھی آتا ہے برے معنی میں بھی آتا ہے. تو اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یقین رکھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں, انہم ملاقو ربہم, کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں, انہیں یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے, اللہ کے پاس جانا ہے, اور اللہ ہمارے اعمال کی ہمیں جزا یا سزا دے گا. تو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں, اور انہیں نماز پڑھنا, صبر کرنا اور کردار میں پختگی اختیار کرنا بالکل بھی مشکل نہیں لگتا. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اور اسی کی طرف جو ہے وہ پلٹ کر جانا ہے, انہیں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے. راجعون, را جیم عین, اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اپنی اصل کی طرف لوٹنا. کلو شیئن یرجعو الی اصلہ, اور ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے, تو وہ یقین رکھتے ہیں کہ ہم سب کو بھی اللہ کی طرف جو ہے وہ لوٹ کر جانا ہے. تو یہ جو ہمارا سبق مکمل ہوا, اس میں ہمیں جو ہے وہ عمل کے لیے کیا اصول جو ہے وہ سامنے آتے ہیں. اس میں ایک بات تو یہ آتی ہے کہ جو ہے وہ علم کی بنا پر آدم علیہ السلام کو فضیلت دی گئی, تو ہمیں علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی چاہیے, علم حاصل کرنا چاہیے, اور بہترین علم قرآن کا علم ہے, حدیث کا علم ہے. پھر دوسری چیز کہ شیطان نے جو ہے وہ کبر کیا تھا, اور ہمیں کبر نہیں کرنا, بلکہ استغفار بھی کرنا ہے, توبہ کرنی ہے, اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے, اور بندوں سے بھی اگر کہیں لگے کہ ہم غلطی پر ہیں تو معافی مانگنے میں جو ہے وہ اس کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. تیسری بات, شیطان کے بہکاوے میں نہیں آنا چاہیے. چوتھی بات, ہدایت پر عمل کرنا ہے. اور پانچویں بات, بنی اسرائیل کے رویے سے بچنا ہے. اور چھٹی بات کہ جب کوئی بھی چیز مشکل لگے تو نماز اور صبر سے مدد لینی ہے. اور یہ ساری چیزیں ہمارے لیے کب آسان ہوں گی؟ جب ہم عقیدہ آخرت ہمارا مضبوط ہوگا کہ ہمیں مرنا ہے اور اللہ کے پاس جو ہے وہ جانا ہے. تو آپ سب جو ہیں اپنے اپنے لیے جو ہے ان آیات کی روشنی میں اپنے کردار کا جائزہ لیں, اور آپ اپنے عمل کے اصول لکھیں کہ میں نے اس سبق سے جو ہے وہ کیا عمل کے اصول جو ہیں وہ لیے ہیں. کیونکہ بغیر عمل کے جو زندگی ہے اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے, بغیر عمل کے ایمان جو ہے اس کا کچھ فائدہ نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.